अगर हम एक ऐसे एडवांस्ड जीपीएस सिस्टम के बारे में सोचें जो मतलब सिर्फ एक गाड़ी को रास्ता नहीं दिखा रहा है,
वो पूरे शहर को कंट्रोल कर रहा है।
बिल्कुल, वो किसी बड़े महानगर की हर एक गाड़ी के रास्तों को एक साथ तय कर रहा है, ट्रैफिक को परफेक्ट बनाने के लिए वो सिस्टम लगातार हर गाड़ी की लोकेशन देख रहा है।
तो बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि पूरे शहर का ट्रैफिक एक एक अदृश्य शक्ति के पूरी तरह से नियंत्रण में है।
सही बात है, लेकिन अगर हम किसी एक गाड़ी के अंदर झांक कर देखें तो वहां बैठा ड्राइवर, वो तो अभी भी अपनी ही मर्जी से स्टीयरिंग घुमा रहा है ना, वो ब्रेक लगा रहा है, एक्सेलरेटर दबा रहा है।
हाँ, उसे लग रहा है कि फैसले उसके हैं।
हाँ, ड्राइवर को लगता है कि वो पूरी तरह से आजाद है, जबकि उस जीपीएस का जो मास्टर एल्गोरिदम है वो उसकी हर आजाद पसंद को अपनी एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा बना चुका है।
और सच कहूं तो इसी विरोधाभास ने सदियों से विचारकों को उलझा कर रखा है। मतलब एक तरफ ब्रह्मांड का सबसे महान योजनाकार है, जिसकी इच्छा के बिना कहते हैं ना कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता,
हाँ बिल्कुल,
और दूसरी तरफ हर एक इंसान की अपनी स्वतंत्र इच्छा है, वो अपने अच्छे या बुरे फैसले खुद लेता है। तो ये समझना हमेशा से एक बड़ी पहेली रहा है कि इंसान की आजादी और सर्वोच्च सत्ता का नियंत्रण, ये दोनों चीजें एक साथ बिना टकराए कैसे काम कर सकती हैं।
हाँ, और यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास डॉक्टर क्रेग कीनर की एक बहुत ही कमाल की रिसर्च है।
जी, जो उन्होंने रोमियो के पत्र पर की है।
हाँ, प्राचीन रोमियो के नाम लिखे गए पत्र के अध्याय 9 से 11 पर। हमारी कोशिश आज ये समझने की है कि ईश्वर की संप्रभुता, जिसे हम अक्सर सॉवरेनिटी कहते हैं, इंसान की आजादी और इतिहास में यहूदी और गैर यहूदी लोगों के बीच के संबंधों को डॉक्टर कीनर कैसे स्पष्ट करते हैं। और मैं शुरू में ही बता दूं, ये कोई भारी भरकम बोरिंग धार्मिक क्लास नहीं है। हम बस इतिहास और आध्यात्म के कुछ सबसे दिलचस्प विचारों को समझने का प्रयास कर रहे हैं।
बिल्कुल।
तो कहानी की शुरुआत होती है इतिहास के पन्नों पर ईश्वर के पूर्ण नियंत्रण से, और इसके लिए फराओ का उदाहरण सबसे पहले सामने आता है।
हाँ, फराओं का उदाहरण ये स्थापित करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इतिहास के रंगमंच पर असल सूत्रधार कौन है। डॉक्टर कीनर बताते हैं कि रोमियो के पत्र में स्पष्ट लिखा है कि ईश्वर ने फराओ को इसलिए खड़ा किया ताकि वो ईश्वर की इच्छा का विरोध करे।
मतलब सुनने में तो ये बहुत अजीब लगता है।
बहुत अजीब लगता है, सतह से देखने पर ऐसा लगता है कि ईश्वर खुद किसी से पाप करवा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके पीछे के तंत्र को समझे तो इसका उद्देश्य ईश्वर की असीमित शक्ति को पूरी दुनिया को दिखाना था। फराओ अपने सत्ता के अहंकार में चूर था।
हाँ, वो खुद को भगवान मानता था।
बिल्कुल, और उसी अहंकार को एक साधन की तरह इस्तेमाल किया गया।
ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई लेखक एक किताब लिख रहा हो,
हाँ
एक कहानी बुन रहा हो।
हाँ
पात्रों को लगता है कि वे अपने फैसले खुद ले रहे हैं, खलनायक अपनी मर्जी से साजिशें रच रहा है, लेकिन अंततः कहानी उसी दिशा में जाती है जो लेखक ने तय की है। फराओ को लगा वो आजाद है, पर वो बस एक मोहरा था।
सही कहा।
और यहां जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि इस पूरी घटना में भी एक तरह की दया और धैर्य छिपा हुआ था।
दया फिराओं के लिए।
हाँ, मतलब अगर हम एक्सोडस या निर्गमन की कहानी देखें तो डॉक्टर कीनर समझाते हैं कि सर्वशक्तिमान सत्ता अगर चाहती तो फराओ और उसकी सेना को एक ही झटके में खत्म कर सकती थी।
पलक झपटते
हाँ, पर उन्हें तुरंत नष्ट नहीं किया गया, उन्हें जीवित रखा गया, एक बड़ा मंच दिया गया, क्योंकि सिर्फ इसराइलियों को नहीं बल्कि उस समय की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी मिस्रियों को भी पता चलना चाहिए था कि असली शक्ति किसके पास है।
ओ, तो ये पूरी दुनिया में अपनी पहचान स्थापित करने का तरीका था। बिल्कुल, और ये संदेश सिर्फ मिस्र तक नहीं रहा। इसके बाद जो पलिश्तियों वाला ऐतिहासिक किस्सा आता है ना, मतलब वो तो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है।
अरे हाँ, संदूक वाला किस्सा।
हाँ, जब पलिश्तियों ने इसराइलियों के पवित्र संदूक, जिसे आर्क ऑफ द कोविनेंट कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया था, इसराइलियों को लगा था कि वो संदूक कोई जादुई तावीज है।
वो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। उन्होंने उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन क्योंकि वे खुद नैतिक पतन में जी रहे थे, वो हार गए और संदूक दुश्मनों के हाथ लग गया।
और फिर पलिश्तियों ने उसे ट्रॉफी की तरह रख लिया।
हाँ, अपने सबसे बड़े देवता दागोन के मंदिर में। लेकिन इसके बाद जो होता है वो बहुत ही रोचक मोड़ है। अगली सुबह जब वो मंदिर के दरवाजे खोलते हैं,
हाँ,
तो देखते हैं कि दागोन की विशाल मूर्ति संदूक के सामने मुंह के बल गिरी पड़ी है।
मतलब एकदम औंधे मुंह।
हाँ, तो उन्हें लगा होगा कि शायद भूकंप आया हो या मूर्ति गिर गई हो, उन्होंने उसे वापस खड़ा कर दिया होगा।
उन्होंने वही किया। पर अगली सुबह जब वो वापस आते हैं तो दागोन की मूर्ति सिर्फ गिरी हुई नहीं मिलती, उसका सिर और दोनों हाथ धड़ से कटे हुए थे।
बाप रे।
और दहलीज पर पड़े थे। और आपको पता है, प्राचीन युद्धों में जब किसी राजा को हराते थे तो उसे अपमानित करने का यही तरीका था, सिर और हाथ काट देना।
अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सिंबल था।
हाँ, और इसके साथ ही पूरे शहर में भयंकर बीमारियों और ट्यूमर फैलने लगे। ये सब इसलिए हुआ ताकि गैर यहूदी दुनिया को संदेश मिल जाए कि उन्होंने किसी साधारण डिब्बे पर नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की है
जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता।
बिल्कुल नहीं।
ये किस्सा तो सच में इस बात का प्रमाण है कि कोई कर्मकांड ईश्वर को बांध नहीं सकता। और इसी को समझाने के लिए यशाया और इर्मिया का वो कुम्हार और मिट्टी वाला रूपक आता है ना।
हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध रूपक है।
कि मिट्टी अपने बनाने वाले से ये नहीं कह सकती कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया। मिट्टी का काम सवाल करना नहीं है।
सही बात है। और इस रूपक के जरिए डॉक्टर कीनर उस पुरानी बहस को उठाते हैं जहां स्वतंत्र इच्छा और ईश्वर की योजना टकराती है। कई लोगों को ये बहुत फिटलिस्टिक या भाग्यवादी लगता है।
हाँ, लगता तो है कि हम तो बस कठपुतली हैं।
पर डॉक्टर कीनर समझाते हैं कि कुमार का रूपक ये बताता है कि इतिहास एक सुनिश्चित उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है। ईश्वर उस इतिहास को और उसमें मौजूद बुराई को भी कुछ समय के लिए इसलिए चलने दे रहे हैं ताकि न्याय स्थापित हो और लोगों को बदलाव का मौका मिले। इंसान अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है।
यहाँ पर आके ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है।
हाँ।
क्योंकि अगर ईश्वरी कुम्हार है,
हाँ,
तो वो अपने लोगों को कैसे चुनता है?
हाँ।
रिसर्च बताती है कि ये चुनाव जन्म या जाति पर नहीं है।
हाँ।
ये हमें कर्म यानी नियमों के पालन और विश्वास की पुरानी बहस की ओर ले जाता है।
हाँ, वर्क्स ऑफ फेथ की बहस।
लेकिन मुझे एक उलझन है। मतलब अगर कोई इंसान पूरी ईमानदारी से एकदम डिसिप्लिन के साथ सारे नियम मान रहा है, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसे कर्मों का अहंकार मानकर इतनी नेगेटिव नजर से क्यों देखा जाता है? नियम मानना तो अच्छी बात होनी चाहिए ना।
ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, पर इसका उत्तर मानव मनोविज्ञान में छिपा है। डॉक्टर कीनर कहते हैं कि नियम मानना बुरा नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब उन नियमों का इस्तेमाल हथियार की तरह होने लगता है,
दूसरों को नीचा दिखाने के लिए।
बिल्कुल, खुद को महान साबित करने के लिए। इसे समझाने के लिए वो कुमरान समुदाय का उदाहरण देते हैं।
ये वही है ना जिनका डेड सी स्क्रॉल से संबंध है।
हाँ, वही समूह जो रेगिस्तान की गुफाओं में रहता था। वो खुद को पूरी दुनिया से अलग मानते थे। उनके नियम इतने कड़े थे कि उन्हें लगता था बस वही ईश्वर के असली लोग हैं।
अच्छा।
उनके साहित्य में लिखा है कि जो उनके समूह में नहीं है वो सब अंधकार की संतानें हैं, शैतान के लोग हैं। तो जब इंसान को लगता है कि वो अपने कर्मों के दम पर ईश्वर को अपना कर्जदार बना रहा है।
हाँ, कि मैंने तो सारे नियम माने हैं, अब मुझे इनाम दो।
हाँ, तब वो मूल उद्देश्य से भटक जाता है। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है।
तो बात सिर्फ अच्छे काम की नहीं है बल्कि उसके पीछे छिपे घमंड की है। और शायद इसी अहंकार को तोड़ने के लिए चुने हुए लोगों की परिभाषा ही बदल दी गई। वो होशेन नबी की कहानी इसका बहुत भावुक उदाहरण।
बहुत ही मार्मिक कहानी है।
हाँ, मतलब उन्हें आदेश मिला कि वो अपने बच्चों के नाम बहुत अजीब रखें। एक का नाम लो एम्मी, मतलब मेरे लोग नहीं। और बेटी का नाम लो रुहामा, यानी जिससे प्रेम नहीं किया गया। मतलब कोई पिता अपनी बेटी को जीवन भर ऐसे कैसे बुला सकता है?
वो नाम दरअसल एक गहरा प्रतीकात्मक संदेश था, समाज को आईना दिखाने के लिए। लेकिन कहानी की खूबसूरती उसके अंत में है।
हाँ, जब वो वापस अपनाए जाते हैं
जिन्हें आउटसाइडर माना जाता था।
हाँ, वे भी अब पूरी तरह से ईश्वर के लोग बन सकते हैं।
और यहीं पर वो पत्थर का रूपक जुड़ता है ना, कि एक ही पत्थर दो अलग लोगों के लिए अलग काम करता है।
सही कहा। जो विनम्र हैं, उनके लिए वो पत्थर नींव का पत्थर या कॉर्नर स्टोन बन जाता है
जिस पर वो जीवन बनाते हैं।
हाँ, पर जो लोग अपने कर्मों के अहंकार में अंधे हैं, उनके लिए वही पत्थर ठोकर खाने वाला पत्थर बन जाता है। इसराइल ने नियमों के जरिए मुकाम पाना चाहा, वो ठोकर खा गए, जबकि गैर यहूदियों ने उसे बस विश्वास से पा लिया।
तो आखिर इन सबका मतलब क्या है? मतलब अगर मैं इसे आज की भाषा में सोचूं, तो मुझे एक एनालॉजी याद आती है।
हाँ, बताइए।
मान लीजिए किसी डेवलपर ने एक बेहतरीन ऐप बनाई है मुक्ति नाम की।
अच्छा, सल्वेशन ऐप।
हाँ, अब कुछ लोग जिद पर अड़े हैं कि वो खुद बैठकर उसकी पूरी कोडिंग फिर से लिखेंगे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो असंभव है। इसे हम कर्मों का अहंकार कह सकते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें कोडिंग का सी भी नहीं आता, उन्होंने बस ऐप स्टोर से उसे डाउनलोड कर लिया। ये डाउनलोड करना ही विश्वास है।
ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है।
हाँ।
क्योंकि ये संदेश की सरलता को दिखाती है। कोडिंग का काम पहले ही हो चुका है।
हाँ।
आपको बस स्वीकार करना है। डॉक्टर कीनर इस पर बहुत जोर देते हैं कि ये संदेश कितना सुलभ है, एक्सेसिबल है।
बिल्कुल।
इसे समझाने के लिए वो एक यहूदी व्याख्या पद्धति का उपयोग करते हैं, मिड्राश।
मिड्राश।
हाँ, मिड्राश मतलब प्राचीन धर्म ग्रंथों में छिपे अर्थ खोजना और उन्हें आज के समय पर लागू करना। इसके जरिए समझाया गया है कि संदेश को खोजने के लिए आसमान में उड़ने या पाताल में उतरने की जरूरत नहीं है।
हाँ, वो तो बहुत करीब है।
हाँ, सीधे इंसान के मुंह में और हृदय में।
हाँ, मुंह से स्वीकार करना और हृदय से विश्वास करना। पर यहाँ डॉक्टर कीनर ने एक बहुत जरूरी बात कही है कि इसे एकदम शाब्दिक या लिटरल नहीं लेना है।
बिल्कुल नहीं। मतलब अगर कोई बोल या सुन नहीं सकता तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि वो बच नहीं सकता। बात अंगों की नहीं, हृदय के समर्पण की है।
ये समझना बहुत आवश्यक है। लोग अक्सर भाषा और शरीर की सीमाओं को ईश्वर की सीमा मान लेते हैं।
और यहाँ डॉक्टर कीनर अपना एक बहुत ही मजेदार निजी किस्सा भी सुनाते हैं।
अरे हाँ, वो यहोवा के साक्षियों वाला।
हाँ, वो पूरी रात जागने के बाद बहुत थके हारे घर लौटे थे, सोने ही वाले थे कि दरवाजे पर जेहोवाज विटनेस वाले आ गए।
मतलब ऐसे टाइम पर कोई आ जाए तो
इंसान चिढ़ी जाता है। वो लोग बहस कर रहे थे कि जो प्रभु का नाम लेगा वो बचेगा, और डॉक्टर कीनर ने अपनी उस भयंकर थकान में भी उन्हें समझाया कि रोमियो के पत्र में उस प्रभु शब्द का उपयोग सीधे तौर पर यीशु के लिए हुआ है,
जो उस समय एक बहुत बड़ा बदलाव था।
हाँ, पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है।
क्या?
अगर उस मुक्ति की ऐप को डाउनलोड करने के लिए इसे सुनना इतना जरूरी है, तो उन करोड़ों लोगों का क्या जिन्होंने ये संदेश कभी सुना ही नहीं?
हाँ, ये तो हमेशा पूछा जाता है।
इसके लिए एक श्रृंखला बताई गई है। कोई कैसे पुकारेगा जब तक विश्वास ना हो? विश्वास कैसे करेगा जब तक सुना ना हो? सुनेगा कैसे जब तक कोई प्रचार ना करे? और प्रचार कैसे होगा जब तक कोई भेजा ना जाए?
हाँ, वो लाइन है ना, पहाड़ों पर सुसमाचार सुनाने वालों के पैर कितने सुहावने हैं।
बिल्कुल।
ये तार्किक लगता है, पर हर कोई जो सुनता है वो विश्वास थोड़ी करता है।
और यही व्यक्तिगत जिम्मेदारी आती है। क्या सच में लोगों ने नहीं सुना है? डॉक्टर कीनर इसके लिए भजन संहिता 19 का उपयोग करते हैं।
प्रकृति वाला।
हाँ, प्रकृति खुद एक बहुत बड़ी गवाह है। आसमान, तारे, सूरज बिना बोले ही उस डिजाइनर का प्रचार कर रहे हैं। कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि उसे कुछ पता नहीं था।
सही बात है।
और अगर बाहरी लोग सिर्फ सृष्टि देखकर उत्तरदायी हैं, तो वो लोग जिनके पास लिखित नियम थे वो तो कहीं अधिक जिम्मेदार हैं।
ये इस चर्चा का एक बहुत बड़ा मोड़ है। मतलब अगर बाहरी लोग इतनी आसानी से ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो उन मूल लोगों का क्या हुआ? क्या ईश्वर ने इसराइल को हमेशा के लिए ठुकरा दिया?
डॉक्टर कीनर इसका जवाब देते हैं, बिल्कुल नहीं। पौलुस, जिन्होंने ये पत्र लिखा, वो खुद इसका सबूत थे। वो बिन्यामिन गोत्र के यहूदी थे।
तो सबको नहीं ठुकराया?
नहीं। और इस अकेलेपन की भावना को दूर करने के लिए इलियाहा नबी का किस्सा आता है। एक समय इलियाहा गहरी निराशा में थे। उन्हें लगा बस वो अकेले बचे हैं,
बाकी सबने झूठे देवताओं को मान लिया है।
हाँ, पर ईश्वर ने बताया कि नहीं, 7,000 लोग अभी भी हैं जिन्होंने घुटने नहीं टेके हैं,
जिसे रेमिनेंट या बचा हुआ अंश कहते हैं।
बिल्कुल। इतिहास कितना भी अंधकार में हो, एक छोटा समूह सच्चाई की लौ जलाए रखता है। और इसी से डॉक्टर कीनर सबसे सुंदर रूपक पर आते हैं, जैतून के पेड़ का रूपक।
ओ, ग्राफ्टिंग वाला।
हाँ, कलम बांधना, एक जंगली पेड़ की डाली को काटकर अच्छे पेड़ से जोड़ देना। डॉक्टर कीनर कहते हैं कि यहूदी लोग असली शाखाएं हैं, और गैर यहूदी वो जंगली शाखाएं हैं जिन्हें केवल कृपा से इस पेड़ में जोड़ा गया है।
ये बहुत ही चेतावनी देने वाला रूपक है। मतलब ये ऐसा है जैसे आपको किसी बहुत पुराने शाही परिवार के डिनर में मेहमान बनाकर बुलाया जाए, आपको इतना सम्मान मिले, और फिर आप घमंड में आकर उसी परिवार के असली सदस्यों को घर से बाहर निकालने लगे। ये कितना भयानक है। पौलुस ने यही चेतावनी दी थी कि असली शाखाओं पे घमंड मत करना।
लेकिन दुर्भाग्य से अगर हम इतिहास देखें, तो बाद की पीढ़ियों ने इस चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
बिल्कुल।
डॉक्टर कीनर बहुत भारी मन से उन दुखद घटनाओं का जिक्र करते हैं, कैसे सदियों तक यहूदियों पर अत्याचार हुए। उन्होंने इनक्विजिशन का जिक्र किया।
हाँ, जहाँ लोगों को यातनाएं देकर धर्म बदलने पर मजबूर किया जाता था।
फिर पोग्रोम्स का दौर आया, यहूदियों की बस्तियों पर हिंसक हमले हुए,
और 20वीं सदी में नाजियों का दौर, वो तो सबसे खौफनाक था।
नाजियों ने तो इतिहास को ही
बदल दिखा ना।
यीशु को डिजुडाइज करने का प्रोपेगेंडा चलाया। वो साबित करना चाहते थे कि यीशु एक आर्य थे, यहूदियों से उनका कोई लेना देना नहीं था।
ये बहुत ही दर्दनाक है।
और डॉक्टर कीनस स्पष्ट करते हैं कि इतिहास में इन्हीं क्रूरताओं के कारण आज तक यहूदी समुदाय इस संदेश की ओर मुड़ने से कतराता है।
ये एक ऐतिहासिक घाव है। तो मूल योजना क्या थी?
योजना ये थी कि जब गैर यहूदियों को ईश्वर का प्यार मिलेगा तो इसराइल को सकारात्मक ईर्ष्या होगी और वो वापस लौटेंगे, पर गैर यहूदियों के घमंड ने बाधा खड़ी कर दी।
तो क्या कहानी ऐसे ही दुखद मोड़ पर खत्म हो जाती है?
अगर हम इसे एक बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो उस कुमार का डिजाइन कभी फेल नहीं होता। डॉक्टर कीनर यशाया 59 का हवाला देते हैं। वो बताते हैं कि जब अन्य जातियों की पूर्णता हो जाएगी,
यानी संदेश दुनिया भर में पहुंच जाएगा,
हाँ, तब एक समय आएगा जब पूरे इसराइल का उद्धार होगा। ये चक्र किसी को बाहर निकालने के लिए नहीं, बल्कि अंततः पूरी मानवता को एक परिवार में समेटने के लिए है।
क्या बात है! सच में आज के इस विश्लेषण को अगर हम समेटे तो हमने देखा कि ईश्वर की संप्रभुता कोई तानाशाही नहीं है। ये एक ऐसा डिजाइन है जो फराओ के अहंकार और पलिश्तियों की गलतफहमियों का इस्तेमाल करके कहानी लिखता है। ये कर्मों के अहंकार को तोड़ता है और विश्वास से सबको, चाहे यहूदी हों या गैर यहूदी, एक ही जैतून के पेड़ से जोड़ देता है।
ये हिस्सा हमें महानता नहीं बल्कि बहुत गहरी विनम्रता सिखाता है। ये पूरा डिजाइन घमंड के लिए नहीं बल्कि उस महान सत्ता के सामने झुकने के लिए है।
बिल्कुल, जैसे हमारा वो GPS सिस्टम था ना शुरू में,
हाँ।
सिस्टम ने रूट रिकैलकुलेट किया ताकि पुरानी गाड़ियां और नई गाड़ियां दोनों सही सलामत मंजिल पर पहुंच सके।
एकदम सही।
इस चर्चा को खत्म करने से पहले ये सोचने वाली बात है कि अगर ईश्वर का इतिहास एक ऐसी कहानी है जिसमें हमेशा आउटसाइडर्स को अंदर लाया जाता है, तो आज के आधुनिक समाज में ऐसे कौन से हाशिए पर खड़े लोग हैं जिन्हें भविष्य में इसी कहानी का हिस्सा बनना है, लेकिन आज समाज अपने अहंकारों के कारण उन्हें स्वीकारने को तैयार नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा।
बहुत ही गहरा सवाल है।
बिल्कुल। तो आज की हमारी इस बातचीत में बस इतना ही।